और अब एक सिलसिला चला जहेज फंड का और इज्तिमाई शादियों का। तो शायद किसी के लिए इसमें तस्कीन हो, लेकिन मैं तो एक मरतबा ऐसी तकरीब में गया हूं तो दुखी होकर आया हूं। हर शख्स का अपना मिजाज होता है, मुख्तलिफ तंजीमात, मुख्तलिफ लोग गरीब बच्चियों की इज्तिमाई शादियां कर रहे हैं। तो मैं एक तकरीब में मुझे खींच के कुछ लोग ले गए। मैंने कहा मुझे तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए तकलीफ का सामान होगा, और दोस्त जिस मकसद के लिए मुझे लेके जा रहे हैं तो उनका मकसद भी पूरा नहीं होगा। ऐसा ही हुआ, एक हॉल में 15 से 20 बच्चियां थीं और दूसरी जानब 15 से 20 बच्चे थे, और उनके मेहमान, उनका हुजूम था, और स्टेज के ऊपर जो कुर्सियां लगी थीं उन पर मुखय्यर हजरात बैठे हुए थे जिन्होंने सरमाया लगाया और जहेज फंड दिए, और तंजीम के लोग आके अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे थे। तो आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैंने बैठे बैठे कहा कि मैं दुआ कर देता हूं, लेकिन उनका असरार बढ़ा। तो मैंने माइक पे आके कहा कि इंसान की जिंदगी में 3 मौके होते हैं जिस दिन वो मेहमान खुसूसी होता है, और सब लोगों की नजर उसी के चेहरे पे होती है। एक जब वो पैदा होता है तो काला कलोटा भी हो तो सारी बस्ती उसका मुंह देखने आती है, और उसे बहनें चांद कह के पुकारती हैं चाहे उसका रंग गहरा स्याह क्यों ना हो। दूसरा मौका इंसान पर उस वक्त आता है जब वो दूल्हा बनता है, तो सारे लोग उसी को देखते हैं और वो निगाहों का मरकज होता है और चीफ गेस्ट वही होता है। और तीसरा वक्त उसके ऊपर तब आता है जब वो चिट्टा लट्ठे का लिबास पहनता है तो सारा शहर उसका मुंह देखने आता है। तो मैंने कहा इन गरीब लोगों से आज तुमने ये हक भी छीन लिया, आज मुखय्यर हजरात को ऊपर बिठाया और इनको नीचे बिठाया हुआ है इसलिए कि ये गरीब हैं, और किसी के चेहरे के ऊपर मैंने कहा खुशी के आसार नहीं नजर आ रहे, उदासियां हैं, और इतने लोगों को इनकी गुर्बत का गवाह बना रहे। एकदम सुकून तारी हो गया हाल पर, क्योंकि मुझसे वो कुछ ऐसी बातें सुनना चाह रहे थे जिससे उनको दाद मिलती। मैंने कहा तुम्हारे जज्बे अपनी जगह पे, लेकिन काश के रात के अंधेरे में इन बेटियों के मां बाप को तुमने कुछ पेश किया होता और ये अपने घर से रुखसत होती तो अर्श वाला रब बड़ा राजी होता। लेकिन बुरा करे नमाइश का कि हमने उन बेटियों का तमाशा लगा दिया। मैं एक शहर में गया तो वहां आजकल वो पहले था ना उम्रे के टिकट महफिल नात में, तो आहिस्ता आहिस्ता मजमा सिमट गया, तो अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जहेज की पर्चियां निकाली जाएंगी। तो इसी साल आपके कुरब में एक जगह 10 के 15 जहेज फंड थे, तो मुझे खिताब करने के लिए उन्होंने कहा, तो बड़े शौक से मुंतजम महफिल ने बताया कि 15 बच्चियों का जहेज भी निकाला जाएगा, और इस पर्दे के पीछे हजारों बच्चियां बैठी हुई हैं। तो मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये जुल्म ना करो, ये ज्यादती ना करो, तुम्हारे पास 100 लोगों का खाना है तो 500 लोगों को ना बुलाओ, कि तुम कुरा अंदाजी करके 100 आदमियों को खाना दे दो और 400 आदमियों को कहो कि तुम्हारा नाम नहीं निकला। तुम्हारे पास 100 का खाना है तो 100 को ही पर्दे से बुलाओ और उनको खाना खिला दो। मैंने कहा 10,000 बेटियां इस पर्दे के पीछे बैठी हैं आपके बकौल, और आप उनमें से चंद को कुरा अंदाजी के जरिए जहेज फंड दे रहे हैं। हर पर्ची पे 10,000 बेटी का दिल धड़केगा कि शायद मेरे मुकद्दर जाग पड़े और गमों की सियारात खत्म हो गई, लेकिन जब आखिरी पर्ची के बाद ऐलान किया जाएगा कि कुरा अंदाजी मुकम्मल हो गई تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجھل ہوں گے. اور رسول اللہ کا میلاد ہو اور بیٹیاں آنسو بہاتی ہوئی جائیں. تو میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے, غم خرید لیے تم نے. خوشیاں بانٹنے لگے تھے, غم بانٹ لیے تم نے. تو یہ زیادتی نہ کرو, یہ جو رواج پڑ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے. خدا را آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے, بہت کچھ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, اور کیا کیا رنگ بنائے گئے. میں نے کہا وہ اچھا تھا, چلو مجھے اس پر بھی بات ہے, لیکن چلو میں نہیں کرتا, لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے تو 10 کو آپ دے کے باقیوں کہیں کہ معذرت ہمارے پاس اتنا ہی تھا. تو آپ کے پاس 100 کا کھانا ہے, 100 کا پانی ہے, تو 500 پیاسوں کو نہ بلائیں, 500 بھوکوں کو نہ بلائیں, 100 کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے, یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے ہمیں خفیہ طور پہ یہ بھی کرنا چاہیے, لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے, تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو, ذمہ دار کو, یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دیندار ہیں, وہ پردے دار ہیں, وہ سگڑ ہیں, وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں. یہ معیار بنایا جائے, دولت کو معیار نہ بنایا جائے, اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا.